नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका मजबूती से एक साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति एक दूसरे के पूरक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। पुलवामा हमले में शहीद हुए वीरों को राष्ट्र आज याद कर रहा है। जनवरी 2025 में भारत का होलसेल प्राइस इंडेक्स घटकर 2.31% रह गया और उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े हैं और दोनों इस बात पर सहमत है कि सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका ने 21वीं सदी में एक प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए 10 वर्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। यह ढांचा 2025 से 2035 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और थाईलैंड के बीच 2000 साल से भी ज्यादा पुराने गहरे सांस्कृतिक संबंध है। थाईलैंड में आयोजित संवाद कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और थाईलैंड के एक्ट वेस्ट नीति एक दूसरे के पूरक है और आपसी प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा है कि ये एशिया की साझा दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं का एक सुंदर उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह सम्मेलन इस बात पर प्रकाश डालता है कि एशियाई सदी सिर्फ आर्थिक मूल्यों के बारे में नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों के बारे में भी है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं शांतिपूर्ण और प्रगतिशील युग के निर्माण में दुनिया का मार्गदर्शन कर सकती है। उन्होंने कहा कि आज संघर्ष लोगों और राष्ट्रों से आगे बढ़ रहे हैं और मानवता तेजी से प्रकृति के साथ संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया है जो हमारे ग्रह के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। राष्ट्र 2019 में पुलवामा हमले में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को याद कर रहा है। ये दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए भीषण आतंकी हमले की छठी वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवानों ने ड्यूटी के दौरान अपनी प्राणों की आहुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूल पाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुलवामा हमले में अपनी जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा, आतंकवाद पूरी मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है और पूरी दुनिया इसके खिलाफ एकजुट हो गई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। 14 फरवरी 2019 को देश ने अपने सबसे घातक हमलों में से एक पुलवामा आतंकी हमला झेला, जिसके परिणाम स्वरूप 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए। इस हमले में पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था और हर साल इसी दिन को ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है, ताकि नायकों को श्रद्धांजलि दी जा सके और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष पर चिंतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के दौरे पर है। राष्ट्रपति ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा बेंगलुरु में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी विकास के मौजूदा दौरे में है और हमें सुनिश्चित करना होगा कि मानवीय मूल्य बराबर रहे। राष्ट्रपति कल रांची में BIT मैसरा के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्य में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। बैठक में महाराष्ट्र में पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में महाराष्ट्र के DGP रश्मि शुक्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य पुलिस बल ने 90% कर्मियों को नए कानूनों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने 7 वर्ष से पुराने मामलों की जांच के लिए फॉरेंसिक सुविधाओं से युक्त 27 वैन तैनात की है। भारत के होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2025 में 2.31% रही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 में ये वार्षिक आधार पर 2.37% थी। प्राथमिक वस्तुओं और सेवा कर से जुड़ी मुद्रास्फीति दर घटकर जनवरी में 4.69% पर आ गई, जबकि दिसंबर में ये 6.02% थी। ईंधन और बिजली में जनवरी में 2.78% की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मुंबई पर कल कई प्रबंध लागू किए हैं। बैंक की संचालन संबंधी चिंताओं के बीच जारी किए गए इन प्रतिबंधों में जमाकर्ताओं को धनराशि निकालने पर पाबंदी भी शामिल है। ये पाबंदी कल बैंक का कामकाज समाप्त होने के समय से लागू हो गए हैं और अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे। इस अवधि के दौरान प्रतिबंधों पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने एक कोचिंग संस्थान IITN प्रशिक्षण केंद्र प्राइवेट लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस संस्थान पर IIT JEE परीक्षा के परिणामों के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने के कारण ये जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसी सामान या सेवा के बारे में कोई झूठा या भ्रामक जानकारी या विज्ञापन जारी न कर सके। सर्वोच्च न्यायालय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की उस याचिका की सुनवाई पर तैयार हो गया है जिसमें उसने यूट्यूब पर कथित रूप से घटिया टिप्पणी को लेकर अपने खिलाफ दायर अनेक प्राथमिकियों को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इलाहाबादिया के वकील की दलीलों पर विचार के बाद कहा कि इस मामले को कुछ दिनों में सूचीबद्ध किया जाएगा। इलाहाबादिया की टिप्पणी से विवाद भड़क गया और देश भर में कई जगह शिकायतें दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सही खाना और सही सोना विद्यार्थियों को अच्छी तरह से परीक्षा देने में मदद करेगा। परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण में पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर ने कहा कि विद्यार्थियों को पोषण युक्त भोजन करना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हसन के साथ मस्कट में द्विपक्षीय बातचीत की संभावना है। ये बातचीत 16 से 17 फरवरी को मस्कट में होने वाले हिंद महासागर सम्मेलन से अलग होगी। उत्तराखंड में 28 जनवरी को शुरू हुई 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज हल्द्वानी में गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ मेघालय के मुख्यमंत्री, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT USA और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का समापन आज नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी को वर्चुअली माध्यम से की। महिला प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा सीजन आज से शुरू होगा। इसमें 5 टीमें भाग लेंगी। पहला मैच वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच होगा। मैच 7:30 बजे शाम को खेला जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की। इस बार कुल पुरस्कार राशि को 2017 की तुलना में 53% बढ़ाकर कुल पुरस्कार राशि $4.5 मिलियन कर दी गई है। ये टूर्नामेंट 19 दिन तक जारी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका मजबूती से एक साथ खड़ी है। पुलवामा हमले में शहीद वीरों को राष्ट्र आज याद कर रहा है। जनवरी 2025 में भारत का होलसेल प्राइस इंडेक्स घटकर 2.31% रह गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।